તારીખ 28/12/1989 શ્રી પરમાગમસાર પોલ નંબર 29, 31, 33 અને 42 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 602
निश्चय दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप ही है। निश्चय दृष्टि से यानी खरी दृष्टि से यानी जीव के मूल स्वरूप को देखें तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। जिनवर और जीव में कुछ फेर नहीं। जैसे जिनेंद्र परमात्मा दिखने में आते हैं व्यक्त रूप में, वैसे अव्यक्त रूप में ऐसे ही है। जिनवर दिखने में आते हैं वो मूल में ऐसे थे इसलिए ऐसे अवस्था में हुए। संसारी जीव प्रत्येक मूल में ऐसे हैं, अवस्था में ऐसे नहीं है। तो मूल में कोई फर्क नहीं है। जैसा जिनवर का जीव है वैसा ही हमारा और आपका सबका है, कोई फर्क नहीं। और मूल में फर्क नहीं, ये बात चलती है, अवस्था वाली बात नहीं चल रही है। क्योंकि निश्चय दृष्टि में मूल की बात होती है, निश्चय दृष्टि में अवस्था की बात नहीं होती है। गुजरात जिनवर और जीव में अंतर नहीं, चाहे वह एक इंद्रिय का जीव हो अथवा स्वर्ग का जीव हो, देव का यानी जीव की एक इंद्रिय पर्याय हो निगोद की, या स्वर्ग का कोई देव की पर्याय हो, यह सब तो पर्याय में है। ये जो फर्क है वो तो पर्याय में है। जीव के मूल स्वरूप में एक जाति होने से कोई फर्क नहीं है। मूल तत्व जो है सब एक सा ही है। वस्तु स्वरूप से तो परमात्मा ही है, कोई फर्क नहीं। जिनकी दृष्टि पर्याय से खिसक कर स्वरूप ऊपर गई है वे तो स्वयं को भी परमात्मा स्वरूप ही देखते हैं। जिनको दृष्टि पर्याय से खिसक कर, मैंने पर्याय पर थी, पहले तो जितनी पर्याय उतना ही उनको मानते थे। जैसे अपन अपने को अनुभव करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में भी जो पुरुष होता है वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो पुरुष रूप मनुष्य हूँ। जो स्त्री पर्याय में है मनुष्यिणी है, वो ऐसा अनुभव करते कि मैं तो मनुष्य हूँ फिर भी मैं स्त्री हूँ। तो ऐसे जितनी अवस्था है पूरा का पूरा उतना ही अनुभव करता है। और मूल स्वरूप होने पर भी, मूल स्वरूप चला नहीं गया, नाश नहीं हुआ, इसका अस्तित्व मिट नहीं गया, फिर भी उसको तो है नहीं ऐसे ही जानते हैं, है नहीं ऐसे ही मानते हैं। तो ऐसी दृष्टि जिसकी थी वो खिसक गई, मैंने मिट गई, ये दृष्टि का अभाव हो गया। और अपने मूल स्वरूप पर जिसकी दृष्टि गई वे तो स्वयं को भी परमात्मा स्वरूप ही देखते हैं। भीतर में तो मैं तो तीन लोक का नाथ हूँ, मेरा तो परमात्मा स्वरूप ही है, कोई सवाल ही नहीं, साक्षात सिद्धपदी विराजमान हूँ मैं, और अनादि काल से वैसा था, अभी ऐसा हूँ, अनंत काल वैसा ही रहूँगा। मेरे इस स्वरूप में कभी भाव हुआ ही नहीं, न भाव का कोई कारण भी इसमें है, न कार्य भी है, ऐसा अपने को देखते हैं। और प्रत्येक जीव को भी परमात्मा स्वरूप ही देखते हैं इस दृष्टि से कि मूल में तो सभी आत्माएं ऐसे हैं, कोई न मेरे से नीचे है, न कोई मेरे से ऊपर भी है, कोई हीन भी नहीं, कोई अधिक भी नहीं, मेरे जैसे सबके सब हैं। मूल में अवस्था का ज्ञान रहता है, लेकिन वो गौण रूप से रहता है, वो मुख्य तौर से तो शुद्ध सत्ता को ही देखने में आता है इस दृष्टि में। सम्यक दृष्टि सब जीवों को जिनवर रूप से जानते हैं, जिनवर जैसे जानते हैं, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, सबको ऐसा जानते हैं, किसी को ऊंच नीच में नहीं देखते, ऐसे जानते हैं। और जिनवर को जीव जानते हैं, और जिनवर को भी समझते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे वे हैं, संसारी को जानते हैं कि जैसा जिनवर है ऐसे सब हैं, भाव रहित है, जैसे सिद्ध परमात्मा अष्टगुण सहित है, वैसे ही जो भवलीन है वो भी अष्टगुण सहित है, इस न्याय से, इस नय से, निश्चय नय से, ये नियम सार में गाथा है, भवलीन जैसे वैसे ही अष्टगुण संयुक्त है सब। हाँ, कितनी विशाल दृष्टि, ये दृष्टि बहुत विशाल है, क्योंकि इसमें सिर्फ मनुष्य को नहीं गिने, देवों को नहीं गिने, एक इंद्रियों को भी ले लिया कि ये भी हमारे जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो उतनी विशाल दृष्टि है कि उसमें जितने भी अनंत जीव हैं वो सबको अपने के बराबर और जिनवर के बराबर पूरे पूरे परमात्मा के स्थान में देख सकते हैं, इतनी विशाल दृष्टि है, उसमें किसी का भी निषेध नहीं। कोई ये कहेंगे कि अभविका कि भवी अभवी का भेद इसमें नहीं है, निश्चय दृष्टि में भवी अभवी का भेद नहीं है, भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव रूप कहने में आया है, क्योंकि कहने में आया है वो भी अशुद्ध पारिणामिक है, यहाँ तो शुद्ध पारिणामिक को देखते हैं, शुद्ध पारिणामिक को इस वक्त नहीं देखते, पर्याय को नहीं देखते, शुद्ध पारिणामिक को नहीं देखते, शुद्ध पारिणामिक को देखते हैं, सब एक से हैं, कोई जाति में अंतर नहीं, ऐसे विशाल दृष्टि है इसमें। अरे यह बात स्वीकार हो तो कल्याण हो जाए, इस बात का स्वीकार होने से जीव को अपना निविड़ा हो जाता है, कल्याण हो जाता है, अवस्था ऐसी हो जाती है। निश्चय दृष्टि से परमात्मा स्वरूप का स्वीकार होने से कल्याण हो जाता है, खुद ही परमात्मा बन जाता है, ये इसका फल आता है, इसलिए पूरा कल्याण हो गया इसका तो। परंतु ऐसी श्रद्धा की रोधक मान्यता रूपी गढ़ का पार नहीं, ऐसी श्रद्धा बनाने में जमाने में बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत होती है, विपरीत मान्यता के गढ़ बीच में खड़े हैं, उसको तोड़ने हैं, जैसे गढ़ तोड़ना मुश्किल है, ऐसे विपरीत मान्यता का गढ़ को तोड़ना जीव को मुश्किल पड़ता है, ये शुरू में जो तकलीफ है वो फिर आगे नहीं है, इसलिए ये मान्यता को कैसे तोड़े, ऐसी मान्यता बनाने में जो भी सामने अपनी मान्यता का भाव सामने आता है उसको कैसे तोड़े, यही लक्ष्य में बराबर रहना चाहिए। क्योंकि जब अपने को मूल स्वरूप तक पहुंचना है, जाना है, तो उसके जाने में कौन रोकता है कि अपने भाव रोकते हैं, अपने ज्ञान का भी प्रयास, अपने श्रद्धा का भी प्रयास, यही उसको रोकते हैं। जो पूर्व गृहित है वो उस पूर्व गृहित को तोड़ रहा है, इसको छोड़ना है, यही कार्य है। अभाव का तो सवाल ही नहीं होता।
अभाव
गौण होने से, जैसे उतनी गौण होती है कि ज्ञान में एक कोने में रह जाती है, ऐसे मुख्य नहीं होती कभी। अभाव तो होने का सवाल इसलिए नहीं कि वेदन तो पर्याय का होता है, वेदन तो पर्याय का होगा। मैं परमात्मा हूँ ऐसा जाना पर्याय में, ऐसा माना भी पर्याय में, ऐसा अनुभव किया भी पर्याय में, तो ये तो पर्याय का अभाव होने का तो सवाल नहीं है। फिर भी उसका आलंबन नहीं है, उसकी मुख्यता नहीं है, उसका आश्रय नहीं है, उसमें एकाग्रता नहीं है, ये सब बातें हैं। एकत्व नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्याय का एकत्व हो रहा है। सम्यक दर्शन के पहले जो स्थिति है वो है कि जो भी पर्याय उदित होती है उसमें एकत्व हो जाता है कि उतना ही मैं हूँ, वेदन जितना ही मैं हूँ, इस ऐसा एकत्व हो जाता है। इस एकत्व को मिटाना है। पर्याय पर्याय के स्थान में रह जाएगी, द्रव्य तो अपने स्थान में है ही, लेकिन उसमें एकत्व नहीं रहा तो कोई पर्याय की आपत्ति नहीं है। जैसे ज्ञानी भी भावना भाते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं तो कहते हैं कि हम कब मुनि हुए, हमारी ऐसी अपूर्व दशा कब हो गई, अपूर्व अवसर हमको ऐसा मुनि होना, सब सर्व बंधन का छोड़ करके हम ऐसे उदयाधीन विचरें, ऐसे कैसे हुए, तो ये तो पर्याय विषयक भाव हुए। और पूर्ण केवल ज्ञान का अभिलाषा भी होती है, भावना होती है कि नहीं, बारों भावना मुनि मुनि भाते कि नहीं भाते, तो ये सब पर्याय विषय की बात है। फिर भी अनित्य आदि पर्याय है, तो उसमें कोई पर्याय का नाम लेने से, भावना में आने से कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यता यानी एकत्व यानी आश्रय अवलंबन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब एक ही काल में होता है। मुख्यता होती है तभी आश्रय होता है, तभी अवलंबन होता है, लेकिन एकत्व होता है तो ये नहीं होना, बस उतनी बात है। तो फिर कोई पर्याय के विषय में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई गलती नहीं है, विप्रयास नहीं है, ये सम्यक है। ये वो अनुभव करे त्यारे मायनू कहवा, ये पहला मायनू नहीं, तो ये वो ओळखाण करीने एकाग्रता अनुभव करे त्यारे एने मायनू, एम ऐसे मान ले कि गुरु ने कहा इसलिए हम इस बात को निषेध नहीं करते, यानी न्याय से भी ये बात ठीक बैठती है, अनुमान भी लगता है, तर्क शुद्ध भी है, नहीं से भी बराबर ये बात स्पष्ट है, नहीं मैंने न्याय तर्क आगम अनुमान ये सब प्रमाण से हम बुद्धि गोचर करके इसको सम्मत करते हैं, इसलिए मान लिया, सो बात भी नहीं। जहाँ तक अनुभव नहीं हुए, प्रकट अनुभव नहीं हुए और उस स्वरूपाकार दशा नहीं हुए, वहां तक माना नहीं है। मानने में तो इस आकार स्वरूप आकार अनुभव हो जाता है, तो उसने माना है, उस वक्त श्रद्धा जमती है। इसके पहले श्रद्धा विकल्प से नहीं बदलती, परलक्ष्य ज्ञान से भी नहीं बदलती, विकल्प से तो नहीं बदलती क्योंकि ये तो एक राग का टुकड़ा है, लेकिन परलक्ष्य ज्ञान भी श्रद्धा को पलटाने में समर्थ नहीं है। जैसे शास्त्र ज्ञान है, हम आगम न्याय से सुमत कर लें, इसलिए कोई श्रद्धा हो जाए ऐसी तो बात नहीं है। ज्ञान अवश्य श्रद्धा को पलटाने में निमित्त कारण है, लेकिन ये स्वोन्मुख ज्ञान, अंतर्मुख ज्ञान, स्वलक्ष्य ज्ञान होता है, यही श्रद्धा को पलटाने में समर्थ है। परलक्ष्य ज्ञान तो अभवी को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का हो जाता है। क्या इसमें आत्मा की बात नहीं आती 11 अंग 9 पूर्व में? सब आती है, पूरी की पूरी आती है, कोई अंग में बाकी नहीं। 11 अंग तो खैर बहुत बड़ी बात है, और ये तो 12वां अंग का भी 9 पूर्व तक आ जाता है, लेकिन अभवी होते हैं। परलक्ष्य ज्ञान में वहां तक संभव है, परलक्ष्य ज्ञान होना इस हद तक संभव है, लेकिन परलक्ष्य ज्ञान कितना भी, ये तो समर्थ दृष्टांत है, लेकिन थोड़ा हो ज्यादा हो कम हो, कमी बेसी का कोई सवाल नहीं है। परलक्ष्य ज्ञान का ये विषय ही नहीं है, और परलक्ष्य ज्ञान में श्रद्धा का पलटने का कोई सामर्थ्य भी नहीं, जैसे राग का सामर्थ्य नहीं वैसे ही। इसलिए सही कार्य पद्धति से सही काम होता है ये जानना चाहिए। यहां तो कहते हैं कि 12 अंग का सार तो यह है कि जिनवर समान आत्मा की दृष्टि में, तो दृष्टि में लो, जिनवर समान आत्मा को दृष्टि में लो, यही 12 अंग का सार है। मैंने सम्यक दृष्टि हो जावे, उस वक्त अनुभव हो जावे जिनवर समान अपनी आत्मा का, यही 12 अंग का सार है। सभी कथन का यही तात्पर्य है, और यही कहने के लिए सकल विस्तार है, पूरा का पूरा जो विस्तार है वो यही कहने के लिए है। और 12 अंग में केंद्र स्थान में जो बात रही है यही बात रही है, सभी कथन यहाँ केंद्रित होते हैं कि तू परमात्मा है, जैसे कैसे भी इसका दृष्टि कर, इसका अनुभव कर, क्योंकि आत्मा का स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा अनुभव करना है, कोई कल्पना बना के अनुभव नहीं करना है, ऐसा है ही वास्तव में, तो ऐसा अनुभव करना है, ऐसी बात है। 29 अच्छा सामने ही है। निर्विकल्प होने वाला जीव निर्विकल्प होने के पूर्व ऐसा निर्णय करता है कि मैं कभी भी रागादि भाव रूप परिणमने वाला नहीं हूं। पहले निर्णय होता है फिर अनुभव होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। निर्णय को हो, पहचान को हो, भावभाषण को हो, प्रतिभास को हो, लक्ष्य को हो, अस्तित्व ग्रहण को हो, बहुत से शब्द हैं, सब एक अर्थ है, एक ही स्टेज को दिखलाने वाले ये शब्द हैं। नहीं, निर्णय होना, निश्चय होना, मैंने प्रतिभास होना, ऐसा लक्ष्य होना, अस्तित्व ग्रहण होना, भाव भाषण होना, ये कहने की बात है। विचार परलक्ष्य ज्ञान में होता है, ये परलक्ष्य ज्ञान में भाव भाषण नहीं होता है। और विचार तो गलत निर्णय में भी होता है और सही निर्णय में भी होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, अंतर है, वो तो समझना पड़े। तो ये निश्चय वाला जो निर्णय वाला प्रकरण है वो अच्छी तरह समझे, वो बात साफ है। ऐसा है कि विचार के काल में निर्णय होता है, इसलिए ऐसे कहते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि विचार कर करके क्या क्या करेगा, थक जाएगा तो विचार छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात है कि जहाँ तक पहचान नहीं हुए वहाँ तक सही महिमा ऐसी नहीं होती है कि जो महिमा कभी जावे नहीं, ऐसी महिमा चालू नहीं होती है। बिना पहचान भी महिमा कर लेते हैं तो ये महिमा टिकती नहीं है, इसमें टिक नहीं सकते, ये बात है। जैसे कोई जोहरी है वो कहेंगे कि भाई आपका जो हीरा है भले ही आपके दादाजी ने खरीदा है और आपके तिजोरी में पड़ा है, लेकिन ऐसी चीज़ आजकल बाजार में नहीं मिलती, इसका मूल्य नहीं हो सकता, तो ये करोड़ों का है, अरबों का है, कुछ भी बोलेगा। तो आपको तो पता नहीं था, फिर भी जतन तो कर लेंगे कि अभी ये घर में नहीं रहने की बात है, अभी इनको सेफ कस्टडी में कोई बैंक में रख दो या कोई ऐसी जगह रख दो किसी को पता नहीं चले। तो क्या पहचान हो गई इसमें? पहचान नहीं हुई है। जो अपने संबंधी जवेरी है, ये जोहरी के कहने से हमने ये कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया और महिमा आ गई, लेकिन ये सही महिमा नहीं है। जब खुद ही जोहरी होता है तब इसकी महिमा आती है, ओहो ऐसी चीज़ है कोई, तो ये तो नज़र का सवाल हो गया। जब पहचान से भी महिमा आती है, बिना पहचान भी महिमा आती है सही, जैसे गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उनको न्याय से ये बात ठीक लगती है, विचार में अच्छी लगती है, तो हम भी महिमा करते हैं, लेकिन ये महिमा असली चीज़ नहीं है, ये कृत्रिम है, तो इससे कोई काम होने वाला नहीं है। उसको ओघ संज्ञा कहते हैं, ओघ संज्ञा बिना पहचान ही रहती है, तो इसमें तो कोई इसका कोई फल नहीं है। जो मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है, अनुभव तक पहुंचना है, इस ऐसा फल इसमें नहीं आता है। पहचान से ही जो सही महिमा आती है, ये महिमा का फल स्वरूप ही अनुभव होता है, यानी निर्विकल्प अनुभव ये एक महिमा का ही परिणाम है। दूसरी भाषा में कहते यही महिमा का ही परिणाम है। हाँ, निर्विकल्प स्वरूप की महिमा निर्विकल्प भाव रूप हो जाती है तब अनुभव होता है, तो ये महिमा का ही एक परिणाम है, एक स्टेज है आगे का। ऐसा हाँ, निर्णय में विचार काल में निर्णय होता है, अनुभव काल में निर्विकल्प निर्विचार दशा हो जाती है, तो निर्णय में आ सकता है कि ऐसा निर्विकल्प हूँ, फिर विकल्प टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं, क्योंकि जब मैं निर्विकल्प हूँ तो विकल्प का निषेध हो ही जाएगा। यही निर्णय का एक लक्षण है कि निर्णय हुआ, इसका सबूत क्या? क्या निर्णय तो हुआ निर्विकल्प स्वरूप का, फिर जो विकल्प का निषेध नहीं आया तो सही रूप में निर्णय हुआ ही नहीं। जिसको निर्णय होता है उसका तो अपना स्वविकल्प भाव का निषेध आएगा ही आएगा, यहाँ से ही चालू होता है सब प्रक्रिया। अनुभव होने की प्रक्रिया निर्णय से इसलिए चालू होती है कि निर्णय तो हुआ है निर्विकल्प स्वरूप का और चल रहा है स्वविकल्प भाव, तो उसका निषेध आया कि नहीं आया? जो आया तो निर्णय सही है, नहीं आया तो निर्णय गलत है, भले ही निर्विकल्प स्वरूप का निर्णय हम कह देवे, लेकिन इसका सबूत कोई होना चाहिए कि निर्णय हुआ है ऐसा। इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि ये पक्ष बदल जाता है, ये निश्चय नहीं के पक्ष में आ जाता है, निश्चय नहीं के विषयभूत तत्व के निश्चय स्वरूप के पक्ष में आ जाता है और व्यवहार नहीं का पक्ष वहां से मिटता है। पक्ष में है वहां तक एकत्व बुद्धि का राग है, स्वरूप का भी एकत्व बुद्धि का राग, ये भी रखने की चीज नहीं है, स्वरूप का तो राग है ऐसी बात नहीं। तो फिर नयातिक्रांत दशा ये अनुभव दशा है, और नयातिक्रांत दशा नहीं हुई फिर भी स्वरूप का निश्चय हुआ तो ये निश्चय नहीं का पक्ष हो गया, उतनी दशा है वहाँ। ऐसा पक्ष बदल जाता है पहले, फिर पक्षांतिक्रांत होता है, अनादि का जो पक्ष है व्यवहार का पर्याय का वो पक्ष छूट जाता है, उसको निर्णय कहते हैं, लक्ष्य हुआ कहते हैं, और निश्चय नहीं का पक्ष हुआ ऐसा कहते हैं। ये सब बात इसमें है निर्णय के प्रकरण में। तो ऐसा निर्णय करता है कि मैं कभी भी रागादि भाव रूप परिणमने वाला नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कभी रागादि भाव रूप परिणमन सकता ही नहीं। मेरे स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो कर सकता ही नहीं राग को, ऐसा मेरा स्वरूप है, परंतु ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाला हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा है कि शुद्ध ज्ञान शुद्ध श्रद्धान इस रूप परिणमन होवे, ऐसा मेरा स्वरूप है। अभी रागादि भाव होंगे ऐसा जानता है कि रागादि भाव चल रहा है, कुछ काल तक चलता रहेगा होगा वो जानता है, फिर भी मैं उनका स्वामी रूप होने वाला नहीं, होगा तब भी मैं उसका स्वामी, मैंने ये मेरा है कर्तव्य है, इसमें एकत्व आश्रय कुछ नहीं होगा, होगा सही पता चलता है कि जहाँ तक मेरी पूर्ण दशा नहीं होगी वहाँ तक रागादि अवश्य उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन ये मैं करता हूँ ऐसा उसमें अनन्य भाव एकत्व भाव होने वाला नहीं, ये मेरा है ऐसा होने वाला नहीं। होते हुए भी मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप हूँ, वितराग स्वरूप ही रहता हूँ, न करता हूँ न करवाता हूँ, न होता है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, ये मेरे लिए ज्ञेय है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये ज्ञेय स्वरूप है, ऊपर ज्ञेय में जाता है ऐसा। परंतु ज्ञान दर्शन रूप परिणमन वाला हूँ, अभी रागादि भाव होंगे ऐसा लगता है, फिर भी मैं उनका स्वामी रूप होने वाला नहीं, मेरा ऐसा प्रयत्न है कि मुझे भविष्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होंगे, फिर भी उस समय राग भी रहेंगे मोक्ष मार्ग में। मिश्र, ये मिश्र धर्म है, राग और वितरागता दोनों मिश्र धर्म है वह, परंतु मैं उस रूप परिणमने वाला नहीं हूँ ऐसा निश्चित है। अवस्था में रागादिक होता होगे होंगे होते रहेंगे कुछ काल तक, लेकिन उस रूप में हो जाऊँ, मेरा स्वरूप वितराग स्वरूप मिट करके मैं उस रूप हो जाऊँ ऐसा कभी बनने वाला नहीं है, ऐसा ऐसा निश्चित है। प्रथम निर्णय करता है पर्याय में, देखिए अनुभव के पहले प्रथम निर्णय करता है पर्याय में, बाद में अनुभव होगा भी पर्याय में, ये सब पर्याय का कार्य तो पर्याय में होगा, परंतु वह पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं तो चिन्ह मात्र अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। पर्याय में पर्याय स्वरूप हो ऐसा निर्णय नहीं करती है, पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं चिन्ह मात्र अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान की ज्योति हूँ मैं, जो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं एक समय की पर्याय रूप हूँ ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है, रागादिक भी मेरा तो स्वरूप नहीं है, लेकिन एक समय की पर्याय जितना भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप जो त्रिकाली जैसा अखंड प्रतिचिन्ह मात्र प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है वैसा मैं हूँ, एक समय की पर्याय रूप में नहीं, ऐसा निश्चय होता है। निश्चय निश्चय स्वरूप का ही होता है, निर्णय जो होता है वो निश्चय स्वरूप का होता है। निर्णय निश्चय स्वरूप का होने से कि मूल में मैं ऐसा हूँ, असल में मेरी जो जाति है असलियत जो है वो ऐसी है, ऐसा पता चल जाने से फिर अवस्था का सही ज्ञान होता है, फिर अवस्था का नाप आ जाता है कि कितनी उल्टी चलती है टेढ़ी चलती है कैसे कहाँ कहाँ जाती है कैसे जाती है, फिर इसका ज्ञान जो है वो ठीक अच्छी तरह होता है सम्यक होता है। मूल स्वरूप को जाने बिना पर्याय की योग्यता का ज्ञान भी सही रूप में नहीं होता है। ऐसे तो क्रोध आता है तो कोई भी संसार में मनुष्य कह सकता है कि ये क्रोध अच्छा नहीं है, भले ही मुझे क्रोध आया लेकिन अच्छा नहीं है, मुझे भी दुख पहुंचाने वाला है, दूसरों को भी दुख पहुंचाता है, ऐसा तो जानते हैं लोग। तो क्या ये सम्यक ज्ञान हो गया क्या कि क्रोध को क्रोध जाना और अच्छा नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है ऐसा जाना, तो ज्ञान सम्यक हो गया क्या कि ऐसा नहीं है? जैसे जाते हैं स्मशान में, बोलते कि देखो ये हालत होती है कि कोई किसी का सगा नहीं, क्या बोलते हैं वहाँ, कोई किसी का सगा नहीं है, ऐसा ही बोलते कि नहीं बोलते? देखो क्या है सगा, कोई किसी के सगे नहीं, वैसे हैं ये संसार तो वैसा ही है, सब बोलते हैं। और ये देह और आत्मदेह से है वो तो उसको तो जलाना पड़ता है, आत्मा तो आत्मा इधर रही नहीं, आत्मा दूसरी चीज़ है, देह दूसरी चीज़ है, दोनों भिन्न है, प्रत्यक्ष तौर से ये अनुभव करने में आता है। तो क्या ज्ञान सम्यक हो गया क्या, भेद ज्ञान हो गया देह और आत्मा का कि नहीं? मूल स्वरूप को जैसा है वैसा अनुभव करें तब पर्याय का ज्ञान सच्चा कहने में आता है, वरना पर्याय का ज्ञान ज्ञान पर्याय जैसी है वैसा सच्चा माने तो भी सच्चा नहीं, जाने तो भी सच्चा नहीं, ये बात है। क्योंकि ये अपेक्षित बात है कि मूल स्वरूप को सही रूप से जाने माने अनुभव करे तब सब बात सही, इसके पहले एक भी बात खरी नहीं, खरी होवे तो भी खोटी, ऐसे नियम तो उतना जरूर है कि सम्यक दर्शन के पूर्व भूमिका में, पूर्व क्षणों में, पूर्व की जो सेकंडों हैं उसमें आत्मस्वरूप का ही विकल्प होता है। लेकिन आत्मस्वरूप के तो बहुत से पहलू हैं, आत्मा भी कहते हैं, ज्ञायक भी कहते हैं, त्रिकाली भी कहते हैं, अपरिणामी भी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, परम पारिणामिक भाव कहते हैं, यानी बहुत से इसके तो नाम हैं जी, उतने विकल्प हैं, यानी गुण हैं उतने विकल्प हैं, जितने गुण हैं उतने भेद हैं उतने विकल्प हैं। तो अमुक भेद का विकल्प होना, मैंने ज्ञायक उतना ही विकल्प होता है कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कोई ध्रुव का विकल्प होता है कि ऐसा भी नियम नहीं, विकल्प निश्चय नए स्वरूप का ही होता है, चाहे उसको ध्रुव कहें तो भी आखा का आखा अखंड ज्ञान में है। ज्ञायक का विकल्प होवे उस वक्त भी जो पहचानने में पूरा द्रव्य आया है उतना ही ज्ञान में है, ध्रुव कहे तो भी वही स्वरूप ज्ञान में है, स्वरूप तो पूरा का पूरा लक्ष्य में आता है। फिर विकल्प एक खंड रूप है, एक गुण का बताने वाला विकल्प होता है, ज्ञान में तो पूरा है। जैसे एक आदमी का दो नाम हो सकता है, तो कोई इस नाम से पुकारते हैं, कोई दूसरे नाम से पुकारते हैं, किसी भी नाम से पुकारो व्यक्ति तो जो ज्ञान में आती हो एक ही आती है, नाम अलग होने से कोई व्यक्ति अलग थोड़ी हो जाती है। वैसे जो पहचानने में जो चीज़ आई अपनी कि मैं ऐसा हूँ, उसका विकल्प कोई भी हो सकता है, ज्ञायक भी इसका विकल्प है, अपरिणामी भी इसका विकल्प है, ध्रुव भी इसका विकल्प है। तो विकल्प का कोई नियम नहीं है कि यही विकल्प चले, कोई एक है कि सिवाय ज्ञायक का विकल्प नहीं चलना चाहिए, तो ये बात ठीक नहीं है। तो कि ध्रुव 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 ऐसा ही विकल्प चलना चाहिए, तो सो बात भी ठीक नहीं है। विकल्प कोई भी चल सकता है, लेकिन स्वरूप का, दूसरे का विकल्प चले या पर्याय का विकल्प चले या गुण भेद का विकल्प चले, भेद प्रभेद का चले, व्यवहार के विषय का किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं चले, ये मर्यादा अवश्य है। विकल्प की ये मर्यादा अवश्य है कि विकल्प चले तो स्वरूप का ही चले, लेकिन ये एक ही विकल्प चले ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। वहाँ उत्तर में ऐसा आपने समझा नहीं है, उत्तर में तो ऐसा ही है। क्या उत्तर में ऐसा ही है, आप समझे नहीं तो क्या करें, कहने का यही अभिप्राय है। सही मैं कहता हूँ, यही अभिप्राय से ये बात चली है। हाँ, कि निश्चय नहीं के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी नींद में सोता है और निर्विकल दशा हो जाए, या जगता है और कुछ कारोबार व्यापार करता है उसमें निर्विकल अवस्था हो जाए। मैंने अशुभ योग में नहीं हो सकता। अब देखिए, नींद में नहीं होता, अशुभ योग में नहीं होता, नहीं छूट गया। जिस वक्त हरण को मारा, ये चित्र इधर लगाया हमने, महावीर स्वामी ने, जीव ने जब भी हरण को मारा, मर गया वो या बेहोश हो गया, कुछ भी हो, उसको पंजा मारा, लोही निकल गया, थोड़ा मांस लोही भी मुख में रख दिया समझो। लेकिन जब ये देखा, मुनिराज को देखा, तब इनके परिणाम बदले, ये शुभ योग में आ गया, मानसिक शुभ योग में आए, काया में नहीं आए, मानसिक रूप से शुभ योग में आ गया कि अरे ये इतनी शांत मूर्ति है कौन, ये जिज्ञासा में वो क्रोध छूट गया, अशुभ परिणाम छूट गया। अच्छा, ये भी विस्मय हुआ कि मनुष्य तो भागते हैं, मुझे देखकर लोग भागने लगते हैं, ये तो नजदीक आ रहे हैं। तो वैसे ही उन्होंने जो जो भी पुकारा, जो भी बोला, क्या बोला उनका पता नहीं है, पर्टिकुलर शब्द तो पता नहीं है कि ये ऐसा बोला, लेकिन जो बोला उसमें भाव तो पकड़ा उन्होंने, ये कुछ मेरी भलाई की बात करते हैं। तो ये कहाँ होगा कि अरे तू तो भगवान महावीर तीर्थंकर का जीव है, ऐसा बोला होगा। तो उनको भले ही ये बात भाषा समझ में नहीं, लेकिन भाव तो समझ में आए कि कुछ मेरी प्रशंसा चल रही है, बात तो कुछ मेरी प्रशंसा की चल रही है। तो परिणाम में, विचार में तो शुभ योग हो गया, मंद कषाय हो गया, तीव्र कषाय शुभ कहने में आता है, कषाय की मंदता को हम शुभ कहते हैं। फिर उनके जो बोध मिला उसमें सब भावात्मा के पकड़ने में आए, उसको सम्यक दर्शन पहुंच गया। तो ये जब होनहार अच्छी हो तो होती हो तो सब हो जाता है, निमित्त और उपादान का मेल खाता है, यही बात है। ऐसा अशुभ योग में सम्यक दर्शन होने वाला, निर्विकल्प दशा होने वाली नहीं, और शुभ योग में भी व्यवहारने का पक्ष नहीं होता है, व्यवहारने का विकल्प भी नहीं होता है, निश्चय नहीं का ही विकल्प होता है, इसमें कोई फर्क नहीं। और तभी अनुभव होता है, लक्ष्य भी निश्चय का और विकल्प भी निश्चय का, और पुरुषार्थ भी उसी ओर का, निश्चय स्वरूप की ओर का जब ही अनुभव हो सकता है, इसके पहले तो नहीं। लेकिन एक कोई विकल्प का दावा करे, ऐसा बंधन करे कि भाई गाय का ही विकल्प चलना चाहिए, ध्रुव का नहीं, या कोई कहे कि ध्रुव का चलना चाहिए गाय का नहीं, ऐसा किसी भी एक विकल्प का कोई नाम ले, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। ऐसा कभी नहीं बनता कि इसको ऐसा ही विकल्प होना एक, लेकिन इस प्रकार का होना, प्रकार ऐसा ही होना चाहिए, विकल्प ऐसा, ये बात नहीं है, इतनी इतना फर्क है। कैसे लगती है,
अभाव की बात झलकती है,
अभाव की नहीं समझना चाहिए, स्पष्टीकरण भी दिया है कि हम अभाव नहीं कहते हैं, गौण कराते हैं, मृत्यु का बाजा ताव से छूटता है, ऐसा करके लिखा है कि पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा करके भी लिखा है कि नहीं लिखा है, कि पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं। लेकिन पर्याय में एकत्व अनादि से कर रखा है तो उसको मिटाना, इसके लिए हम एक अच्छा दृष्टांत देते हैं कि आपके साथ कोई 5 साल की उम्र का बच्चा लड़ाई करने को आया कि पद्मचंद जी आ जाओ, मेरे आपके साथ लड़ना है, मैं तो मारूंगा आपको। तो आप तो उनको एक हाथ से पकड़ के ऐसे करेंगे ना तो तीन गुलाट खा जाएंगे वो। 5 साल का बच्चा क्या है कि एक दकत आस्ते से दोगे ना तो 2-3 गुलाट खा जाएगा वो। और कोई आपकी बराबर उम्र का कोई गुंडा आ गया और आपको यहाँ से पकड़ा कि हमको तो हम तो गला दबा देंगे आपका, मार देंगे, आपका मारेंगे ऐसा कि मृत्यु हो जाएगी, तो खून करने का है वैसे। फिर इतनी पकड़ है, ये शक्ति वाला आदमी होता है तो उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे बच्चे को धक्का मारता ऐसे मारोगे क्या?
नहीं।
उसको तो इतना जोर से आप धक्का मारेंगे कि जितनी आप में ताकत हो उतनी ताकत का प्रयोग करेंगे कि पूरी ताकत से उसको धक्का मारो तब मेरा गला छूटेगा वरना मैं मुझे मार डालेगा। तो ये जो दर्शन मोह है ये पूरा गुंडा है, पूरा शक्ति वाला गुंडा है। उसको छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से धक्का मारना पड़ता है। तो ये पूरी ताकत से धक्का मारने का भाव कैसा होता है इसका आपको सही प्रदर्शन देखना है तो द्रव दृष्टि प्रकाश को देखो आप। ये बात है इसमें, ऐसी बात है। उतने जोर से अभाव, ये बात तो ऐसे ये छुड़ाने की बात है। इतना जोर से बात कही है कि किसी को अभाव सा दिखे, लेकिन स्पष्टीकरण तो और जगह मिलता है इसलिए इनका अभिप्राय तो साफ हो ही जाता है। और आप पत्र में देखेंगे तो द्रव्य पर्याय का एक साथ अनुभव होता है, वो तो हर एक पत्र में आता है। तो वहाँ तो ऐसा क्यों नहीं लिखा कि अकेला हमको तो द्रव्य का अनुभव आता है पर्याय का नहीं आता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा वहाँ? आप एक एक पत्र में देखो तो त्रिकाली में श्रद्धा की व्यापकता होते ही द्रव्य पर्याय का एक साथ अनुभव में आता है, ऐसा लिखेंगे। अगर पर्याय का अभाव होता तो पर्याय का अनुभव होता, वो बात कैसे लिखेंगे? तो ये तो इनके मूल दस्तखत है, हस्ताक्षर में ये चीज तो आई है। तो पर्याय का अभाव कोई कहते हैं कि हमको ऐसा दिखता है तो वो बात है ही नहीं, तो इनके खुद के पत्र से ये बात मिलती है। इसलिए ये छुड़ाने की बात है, एकत्व छुड़ाने की बात है। पर्याय में एकत्व इतना हो रहा है और इतना कर रखा है कि बहुत ताकत लगानी पड़ती है इसकी। और कितनी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मैंने कितनी, ये इसका ये इनके शब्द में आप अलग अलग तरह से ये भाव उठेंगे, अलग पहलुओं से बहुत से भाव मिलेंगे कि जिसमें वो कितने जोर से धक्का देते हैं पर्याय के एकत्व को। એટલે એ તો પોતાને એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં તો બે નહીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે એમ કહેવું છે, ક્યાંક દ્રવ્યાર્થિક નહીનો તો ક્યાંક પર્યાર્થિક નહીનો પણ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, અને એ રીતે એ કામની ચીજ છે। આ તો ભાઈનો તો એમ પ્રશ્ન છે, હા એ તો तो ऐसा है कि किसी भी ग्रंथ का अभ्यास तो ठीक सांगोपांग करना चाहिए, जहाँ जोर देने की आवश्यकता है वहाँ जोर देते ही हैं ग्रंथकार, देंगे ही। फिर भी कोई एकांत करने के लिए ये बात नहीं है या संतुलन गंवा देने के लिए भी नहीं है, इनके ज्ञान में तो पूरा संतुलन रहता है। कोई संतुलन खो बैठता है तो आभास में आ जाता है, इसलिए संतुलन के जितने मुद्दे हैं उतने मुद्दे ठीक बराबर समझ लेना चाहिए। जैसे द्रव्य पर्याय का विषय है, निश्चय व्यवहार का विषय है, ये जितने भी संतुलन के मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यहाँ जोर देने का है फिर भी संतुलन रख करके। और वो ऐसे होता है कि जब पदार्थ का यथार्थ दर्शन होता है, समझ में आता है, और हित कैसे होता है इसकी विधि का पता चलता है, तब ये सब संतुलित रूप से काम चलता है। और ये संतुलित रूप से कार्य पद्धति नहीं रही तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने वाली है, वो नुकसान है। तो हाँ, तो वो तो क्या है कि उसने तो वहीं लिखा है कि सम्यक अनेकांत भी सम्यक एकांत के लिए हैं, और सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत हमेशा साथ ही रहता है। ये एक सिक्का की दो बाजू है। जैसे मैं परमात्मा ही हूँ तो उसमें मेरे निश्चय स्वरूप में मैं सिवा परमात्मा और कुछ नहीं हूँ, ऐसा अनेकांत साथ में ही है। एकांत अनेकांत सम्यक रूप से साथ में रहते हैं, और मिथ्यात्म में भी एकांत और अनेकांत, मिथ्या अनेकांत और मिथ्या एकांत साथ में रहते हैं। ये तो दोनों साथ में रहने वाली चीज है, उसको अलग कर नहीं सकते। हाँ, प्रश्न है, अनुमान ज्ञान द्वारा आत्मा का निर्णय करे वह अनुमान ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा? उत्तर कि अनुमान ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। सम्यक ज्ञान तो अनुभव होते ही ज्ञान सम्यक होता है, उसके पहले उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहते। वो तो मिथ्या ज्ञान में निर्णय होता है, आत्मा का निर्णय भी मिथ्या ज्ञान में होता है, मिथ्या दर्शन होता है तब होता है, सम्यक ज्ञान में निर्णय नहीं हुआ। निर्णय तो उसी काल में होता है कि जब ज्ञान मिथ्या होती है, दर्शन मिथ्या होता है, उसी काल में ही निर्णय होता है। हाँ, फिर सम्यक सम्मुख उसको कहते हैं, लेकिन ज्ञान वहाँ सम्यक नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा देते नहीं। इसलिए थोड़ा अच्छा नाम दे दिया सम्यक सन्मुख वाला, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या कहा? सम्यक सन्मुख सम्यक दृष्टि कहा? नहीं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है उनको। तो क्या है कि उसका एक अलग वर्ग है, ऐसा कहने का मतलब है। मिथ्या दृष्टि तो सारे संसार के जीव है, लेकिन सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि इसका एक दूसरा क्लास ले लिया, दूसरा वर्ग ले लिया, इसका एक अलग स्टेज ले लिया, स्टेज अलग ले लिया, क्लासिफाइड कर दिया उसको कि भाई ये इसका इस क्लास का नहीं है, इस क्लास का है, ऐसा ऐसा। दोनों का स्थान अलग अलग है, इसलिए जैसे एक प्लेन में मुसाफरी करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव क्लास के मुसाफिर हैं, ये ऑर्डिनरी के हैं, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग मिलता है, और क्या बात, लेकिन उसका क्लास तो अलग है। वैसे इनका क्लास अलग है तो मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि नहीं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होने वाला है, उतनी बात जरूर है। सम्यक सन्मुख होने से ये ऐसा मिथ्या दृष्टि है कि जिसका मिथ्यात्व छूटने का काल पक गया है, ऐसा बताने का वहाँ अभिप्राय है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि। अपने संसार में होते नहीं कि ये सगाई हुई लेकिन शादी नहीं हुई, क्या कहते हैं? शादी इसके साथ होने वाली है। सगाई का मतलब क्या है कि शादी तो इससे ही होगी, लेकिन शादी वो शादी है, सगाई वो सगाई है, अलग जो अंतर है वो तो अंतर है ही, ऐसी बात है। ऐसे अनुमान ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। सम्यक ज्ञान के साथ आनंद होता है, देखिए ये इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दे दिया, ये मोहर लगी आनंद की उसको, ज्ञान के साथ आनंद हो गए तब ज्ञान को हम सम्यक कहेंगे। और भले ही वो आत्मा को लक्ष्य में ले लिया है, पहचान कर लिया है, निर्णय कर लिया है, फिर भी आनंद तो उत्पन्न नहीं हुआ इस वक्त, विकल्प में चलता है आकुलता, आनंद नहीं चलता। तो आनंद सहित का ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान ज्ञान हो तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर ऐसा आनंद के बाद फिर जो दशा चलती है परिणति वाली है, तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष रहित केवल अनुमान ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं है। जहाँ तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, परिणति में तो प्रत्यक्ष होता है, परिणति भी अतींद्रिय है। परिणति जो है सविकल्प दशा में वो भी अतींद्रिय पर्याय है। तो ऐसे प्रत्यक्ष रहित केवल अनुमान ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रवचन सार में गाथा 172 अलिंग ग्रहण के बोल में कहा है कि प्रत्यक्ष रहित अकेले अनुमान ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है। आत्मा अनुमान ज्ञान का विषय नहीं है, मैंने अनुमेय नहीं है, अनुमान में आने योग्य नहीं है। प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान दूसरी चीज है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, केवल अनुमान कर ले तो उसको कोई सम्य ज्ञान कहने में नहीं आता है। अनुभव के बाद प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान, ये सही है, ये अनुमान प्रमाण, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, वो सही प्रमाण है। अनुभव पूर्वक जो है, अनुभव पहले है, उसको सम्यक ज्ञान की कोटि में उसको नहीं रखते, यही बात है। ले जाने वाला है, लेकिन वो भी आया तो नहीं, आनंद आया नहीं है। कभी कारण में कार्य का उपचार हो सकता है, फिर भी सही वस्तु स्थिति ख्याल में रख के ये बात है। ये कारण अवश्य है कि जो कारण से कार्य का निष्पत्ति होती है, तो कभी कार्य का कारण में उपचार किया भी जाता है। श्रीमद जी कभी कर लेते हैं। श्रीमद जी ने तो वहाँ तक कहा कि ऐसे अनुमान है वो एक प्रकार का सम्यक दर्शन है, और इसका कारण भी पकड़ा कि ऐसा निर्णय कौन कर सकता है कि जो सत्पुरुष के चरण में रहते हैं, सत्पुरुष को पहचानते हैं, जिसको सत्पुरुष की पहचान आई और बहुमान आया पहचान पूर्वक का, वो भी सम्यक दर्शन का कारण है। तो उसको एक समकित कहा, उसको भी सम्यक दर्शन कह दिया। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि यहाँ पर कार्य का कारण में उपचार करके हम उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। जो सत्पुरुष को पहचानते हैं और इसकी महिमा करते हैं उसको हम सम्यक दर्शन कहेंगे, तो उनको सम्यक दर्शन है। जो सम्यक सन्मुख हुआ उसको भी सम्यक दर्शन कहेंगे, क्योंकि सम्यक बात प्राप्त करने वाला है। और जिसको प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन हो गया उसको तो कहने में कोई आपत्ति है ही नहीं, कोई दोष नहीं है उसमें। आनंद का वहाँ अनुभव, आनंद पैदा ही नहीं हुआ ना वहाँ,
आनंद का उपभोग
उपभोग है ही नहीं। पैदा हो गए तो उपभोग हो गए ना।
और बाद का जो अनुमान है वो आनंद का उपभोग कर सकता है।
हाँ, वो तो उपभोग करके आया है और वर्तमान में भी परिणति में है, कुछ प्रत्यक्ष पूर्वक है वो, तो इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण सिद्धांत का सार का सार तो बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना वह है। यही यहाँ से मार्ग बदलता है। मैंने जो विधि है उसमें अंतर्मुखता आनी चाहिए कार्य की विधि में, ये कार्य पद्धति है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार अंतर्मुख अवलोकता विलेथता नैवार। ये आत्मसिद्धि का पद है। तो कहे कि बहिर्मुख में तो विकल्प होगा और सारे संसार की जो जंजाल है उसमें पैदा हो जाती है, अंतर्मुख होते ही ये बात खत्म, अकेला आत्मा रह गया, अंतर्मुख ज्ञान का विषय, अंतर्मुख परिणाम का विषय तो अपना स्वयं द्रव्य ही है, अंतर तत्व स्वरूप जो है। तो ज्ञानी के एक वचन में भी अनंत गंभीरता भरी होती है। देखिए ये श्रीमद् जी का महिमा करते हैं गुरुदेव कि देखिए ज्ञानी के एक वचन में भी अनंत गंभीरता भरी होती है। कितनी अनंत गंभीरता भरी होती है। हो भाग्यशाली होंगे उन्हें इस तत्व में रस आएगा, और रस आएगा तो तत्व के संस्कार गहरे पड़ेंगे, उसका निवेड़ा हो जाएगा। जिसको आत्मस्वरूप सुनते ही रस आता है, स्वरूप की रुचि बढ़ती है और स्वरूप की रुचि पुष्ट होती है, रुचि और रस अविनाभावी परिणमन होते हैं, तो रस आता ही है, तो उसको संसार उसको संस्कार पड़ता है, संस्कार पड़ता है वो, तो फिर संस्कार का अंकुर उठते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। संस्कार एक बीज है जिसका अंकुर है वो स्वानुभव और सम्यक दर्शन है। ऐसे तो ये बात लिया है कि बहिर्मुखता छोड़ना है और अंतर्मुख होना है। बिना अंतर्मुख हुए बहिर्मुख भाव में कुछ भी क्रिया परिणाम की होवे उसको बाह्य क्रिया कहने में आई है। बाह्य क्रिया से आत्मा को कुछ लाभ नहीं। बाह्य क्रिया में शरीर मन वचन काय की क्रिया को बाह्य क्रिया कहें उतनी बात नहीं है। जितने भी बहिर्मुख परिणाम है वो बाह्य क्रिया है, और बाह्य क्रिया है उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं, वो एकांत आत्मा को नुकसान करने वाली ये कर्मबंध का कारण है। ऐसा विकल्प बाह्य क्रिया है, ऐसा अंतर्जल्प भी बाह्य क्रिया है। बहिर्जल्प स्थूल विकल्प है और सूक्ष्म विकल्प को अंतर्जल्प कहते हैं, वो भी बाह्य क्रिया है। शास्त्र वांचन तो बाह्य क्रिया है ही, लेकिन ऐसा अंतर्जल्प भी बाह्य क्रिया है। उसमें कर्म बंद होता है, कर्म का निर्जरा नहीं होती है, बंद होता है। ऐसी बात तो ये 12 अंक का सार है, सिद्धांत का सार है, अंतर्मुख होना।